भक्ति दो प्रकार की होती है। एक बाह्यमुख जीवों को किसी प्रकार से भक्ति में लगाने के लिए उनकी रुचि नहीं रहने पर भी उनको शास्त्र का भय दिखलाकर उनको भक्ति में प्रवर्तित करना। भक्ति में जब आदमी प्रवर्तित होता है, रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, किंतु उनको उत्साह इत्यादि देकर कष्टों का भय दिखला करके उनको भक्ति में जो लगाया जाता है इसको कहते हैं वैधि भक्ति। इस वैधि भक्ति में गुरुकरण, दीक्षा और चौथा प्रकार के अंगों में से जो अनुकूल हैं उनको पालन करना जरूरी होता है। गुरु में भी उच्च कुल का भाव, सौंदर्य, तत्व ज्ञान, शास्त्र ज्ञान इत्यादि देखा जाता है। शिष्य में भी वो सब सद्गुण जो शास्त्रों में कहे गए हैं उसको देखा जाता है। फिर वो हरि कथा सुनते 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 धीरे धीरे उसका कुल विचार दूर होता जाएगा, भक्ति में प्रवेश कर एक ये पद। और जिनको पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है और इस जन्म में भी वैसा ही उसको वैष्णव का संग मिल गया, वैष्णव का संग मिल गया, भगवान की कृपा से गुरु भी ऐसे मिल गए और भगवान की कृपा से उनको ऐसा स्थान भी मिल गया भजन करने का अनायास ही, ब्रज नवदीप ये संग मिल गया, असाधुओं का संग भी हो गया, पूर्व जन्म का संस्कार भी उन्हीं में है। ये सब चीजें मिलकर के किसी साधक को रुचि के सहित वो भजन करने की लालसा होती। इसमें स्थूल गुरु दीक्षा, स्थूल अनुष्ठानिक प्रधान में इसके भूरी भूरी होता है, किंतु संघ के ऊपर में गुरु जी का गुरु का संग होगा, उसमें गुरु दीक्षा क्या है, उसमें गुरु दीक्षा है वही सब बातों का जो भक्ति के लिए, जो रुचि के लिए अनुकूल होती है वो सब इसके लिए विशेष आवश्यक है। गुरु उन लोगों को वही चीज देता है। स्थूल व्यक्तियों को पहले स्थूल भाव ये सब देगा, स्थूल संग देगा, स्थूल सेवा में लगाए, और जिनको रुचि है पूर्व जन्म का संस्कार है उनमें इन लोगों की रुचि ही नहीं जाएगी। इसलिए ऐसे लोग जो हैं राधानंद भक्ति के अधिकारी, कुछ लोग इनके अंदर है, इसलिए इनकी दीक्षा केवल अनुष्ठान की नहीं होगी। इनकी दीक्षा कैसी होगी, अभ्यंतरी विद्वदरूढ़ी दृष्टि से इनकी दीक्षा होगी और उसको ग्रहण कर। अब रामानंद का जो संवाद है वो वैदिक भक्ति का नहीं, यह है रागानंद का उपाख्यान। किसी साधक को ऐसे पहले जन्म का संस्कार है, रुचि है, और उसको यदि अच्छी तरह से श्रवण करेंगे उनका राग अनुगा भक्ति में जरूर प्रवेश। उन्होंने ये भी बतलाया श्रद्धा स्वाभाविक रूप से पहले ही स्थिति से दो प्रकार की होती है। एक होगी ऐसे लोगों का संग में उसकी उसकी प्रवृत्ति होगी, और एक होगा वैदिक भक्ति की तरफ में ले जाने वाली, और एक होगी रागानुगा भक्ति की तरफ में। एक तो शास्त्र अवधारणामय, एक लोभमय श्रद्धा, ये दो प्रकार की लोभ भी बदला है। इसके बाद में साधु संग भी होगा, उनको शास्त्र जानने वाले लोगों से पहली वाली का संबंध अधिक होगा, मर्यादामयी, और दूसरी होगी लोभमयी, उसको वैसा ही साधु संग चाहिए, वो दूसरे प्रकार का, क्योंकि पूर्व जन्म में उसका कुछ संस्कार ही ऐसा हो गया है। धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते दोनों श्रद्धाओं के लिए जरूरी है पानी का सींचना, अर्थात श्रवण और कीर्तन, दोनों प्रकार की श्रद्धाएं उत्पन्न होने पर भी यदि हरि कथा ऐसी सुनने को न मिली, श्रवण और कीर्तन करने के लिए ऐसा सुयोग नहीं मिला, तो दोनों लताएं ही सूख जाएंगी। इसलिए दोनों में ही श्रवण और कीर्तन करना प्रधान चीज है, और बाकी सब क्रियाएं पीछे से, श्रवण और कीर्तन मूल है। जब श्रवण में रुचि नहीं हुई, श्रवण में रुचि नहीं हुई, थोड़ा सा वो कीर्तन भी कर रहा है तो उसका कीर्तन गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आदौ श्रवणम, सबसे पहले श्रवण करें। यदि राय रामानंद का संवाद नहीं होता या ऐसा इसमें है और नहीं सुनते, तो हम लोगों को कभी भी इन सब चीजों की धारणा नहीं। अब ये बढ़ करके राय रामानंद संवाद में आया, सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म में रह करके विष्णु की सेवा जो करता है यही हमारे लिए साध्य और साध्य है उनकी सेवा, और उससे संसारिक द्रव्यों का पाना या स्वर्ग या मोक्ष तक पाना ये हुआ साध्य। महाप्रभु जी ने इसको भी वाच्य कहा, आगे बढ़े तब सात कर्मों का त्याग करना ही
कर्मार्थ,
कृष्ण के प्रति कर्म अर्पण, जो कुछ करते हैं जज्जु होती जग करोती जदा नासी, जज्जु होती जदा नासी सत्पुरुष दुष्ट मतर, भगवान को सब कर्मों का अर्पण। ये संसार में जो भक्त लोग हैं साधारण लोग हैं वो करीब करीब 99% यही करते, इसी को वो शुद्धा भक्ति समझते हैं, जो कुछ करो भगवान को। महाप्रभु जी ने कहा यो वाद्य ये भी ठीक है, क्योंकि आत्मा से इसका संबंध नहीं, कृष्ण के भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं, ये सब फूल व्यापार है, और इसका जो साध्य है मुक्ति इत्यादि वो भी बाह्य। तब उन्होंने कहा सब धर्मों का प्रत्याग त्याग करो, तो यही गीता में बतलाया सर्वधर्मानुपत्य माम एकम, सब कुछ त्याग, अर्थात तो इनसे बाहरी जितने अनुष्ठान है इनसे सब कुछ नहीं होगा, ये भक्ति नहीं है, इसमें भक्ति है ही नहीं, भक्ति आत्मा की वृत्ति है, जब तक आत्मा की वृत्ति ना हो तब तक वो प्रेमा भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि रागानुगा के लिए यह कह रहे, इसलिए रागानुगा भक्ति से इसका संबंध नहीं होता। तब उन्होंने ज्ञान है प्रयास में ज्ञान कर्म इत्यादि सब प्रकार के इन चीजों को दूर करके भगवान की कथाओं का श्रवण करो, उन कथाओं को प्रणाम करो, कथावाचक को स्थान को सबको प्रणाम करो। तो ऐसा करने से तुम्हारे तुम अजित भगवान को भी जीत सकते हो। जो भगवान दूसरों के लिए उसको भी कथाओं के माध्यम से जय किया जाए। उसके बाद उन्होंने बतलाया आप भगवान का अर्चन पूजन सब षोडश उपचार से करेंगे, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं हो तो उनसे भगवान प्रसन्न नहीं हो, और अर्चन भी नहीं करते हैं किंतु आपके हृदय में प्रेम है तो जो कुछ भी दे दे उसी से उसको भगवान प्रेम के साथ में ग्रहण करते हैं। वो क्या है गीता में पत्रम पुष्पम फलम द्वयम जो उन्हें भक्त आप पत्र पुष्प जो कुछ भी है वो यदि प्रेम से दिया जाए तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जैसे सबरी के सुदामा के हाथी के कमल ऐसे मुझे। इसके बाद में महाप्रभु ने कहा कि और आगे चलो, तब उन्होंने कहा प्रेमा भक्ति होना चाहिए, ये वैधि भक्ति के लिए कहा गया। कृष्ण भक्ति रसभाविता बतलाया जिसके हृदय में प्रेम है ऐसे महात्माओं का यदि संग हो प्रेमी रसिक वैष्णवों का तो अपना चीज देकर के भी उसकी प्रेमा भक्ति को ग्रहण करने की चेष्टा करो, वो प्रवृत्ति वृत्ति अपने हृदय में लाने की चेष्टा करो। कौन सी वृत्ति? कृष्ण भक्ति और रस एक भक्ति है, भक्ति आया है वही भक्ति के लिए, और भक्ति रस जो हुआ ये रागा रागानुगा के लिए। तो यदि रागानुगा भक्ति रस पानी की लालसा है तो ऐसे वैष्णवों का संग अनिवार्य है, ऐसे गुरु का संग अनिवार्य है, बिना ऐसे वो हो नहीं सकता। इसलिए उसकी मति सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, या पीछे से भी सुना चौथे ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर, हम लोगों के गुरु पाठ पर ऐसे रसिक वैष्णवों का संग होगा तो ही वैसी भक्ति हो सकती है। अन्यथा हमको समझ में ही नहीं आएगा कि भक्ति में तारतम्य क्या है, ये हमको ज्ञान नहीं होगा, किंतु भक्ति में तारतम्य है। महाप्रभु जी ने कहा कि ठीक है आगे से सब दास्य सब सत्य वात्सल्य और अंत में मधुर रस का वर्णन, गोपियों का मधुर रस वर्णन। महाप्रभु जी ने कहा कि और आगे बढ़िए तो इसके बाद में पूछने वाला जगत में नहीं, महाप्रभु जी आप ही ने इसको सब ने राधा प्रेम को सर्वोत्तम बतलाया। सब उन्होंने पूछा ठीक है राधा प्रेम ही सर्वोत्तम है, क्योंकि सब गोपियों को भी छोड़ करके एकांत में उनके वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के लिए कहा न पा रहे हम निर्वज्ञ हैं, मैं तुम्हारे अत्यंत ऋणी हूँ, जन्म जन्म तक तुम्हारे इस ऋण को कभी भी से मैं कभी भी ऋण नहीं हूँ। राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है। ये हुआ क्या, ये हुआ साध्य भी है साधन भी है, दोनों है। राधा जी का प्रेम ही साध्य है और साधन क्या है, प्रारंभ से राधा का भक्ति। कृष्ण को साध्य नहीं बतलाया, कृष्ण के प्रति जो आश्रय लोगों का जो प्रेम है जिसके द्वारा कृष्ण प्रतिभूत हो जाते हैं ये साध्य है, ये ठीक रखना चाहिए। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन साध्य नहीं, साध्य क्या उनके प्रति जो प्रेम है, प्रेम है प्रयोजन, वो प्रेम नहीं रहने से कृष्ण भी रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने कहा कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व और विलास ये चार चीजें थी, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। कृष्ण तत्व कृष्ण ही समस्त अवतारों की मूल अवतारी है और कृष्ण का जो स्वरूप है नवकिशोर नटवर देनुकर हाथों में बेनु देनुकर नटवर नवकिशोर नरबपु तहार स्वरूप। नरबपु नवकिशोर, नटवर, नंदनंदन और क्या ललित,
हीरो ललित,
हीरो ललित और विदग्ध चतुर, ये सब कृष्ण का जो रूप है वो सर्वांग सुंदर है सब रूप। विशेष करके ये गोपियों के लिए, मधुर रस के लिए ये कृष्ण नायक, कृष्ण उपास। और राधा जी के लिए बताया कि उनकी लाजनी शक्ति है, कृष्ण को सब प्रकार से आनंद देती हैं, उनके प्रसंग अंग प्रत्यंग भाव जो कुछ ही है, श्रृंगार साज स्नान करना इत्यादि सब कृष्ण प्रेम से बना हुआ है, कृष्ण ही प्रेम। श्री संध्या में स्नान करती हैं, सबसे पहले करुण्य, फिर तारुण्य और फिर लावण्य। इस अमृत सिंधु में पहले कारुण्य अमृत सिंधु में पहला स्नान, दूसरा स्नान तारुण्य अमृत धारा में स्नान करती है और तीसरा लावण्य। और इसके बाद में जितने प्रकार के श्रृंगार हैं वो कृष्ण के ये अस्त्र सात्विक व्यभिचारी और ये सब जो भाव हैं उनका श्रृंगार धारण करती है, कृष्ण को सब प्रकार से आनंदित करती है। ये राधा जी का स्वरूप है, कृष्ण जगन मोहन है किंतु ये राधा जी जगन मोहन मोहिनी है, बहुत से तत्वों का बतलाया। इसके बाद मैंने बतलाया दोनों का परस्पर जो प्रेम तत्व है वो बतलाया, वो प्रेम तत्व क्या है। ये प्रेम तत्व जगत में जो प्रेम होता है ये होता है अंधा और जड़ होता है ये जगत का। और जैसे लोहे में मोर्चा होता है, मोर्चा है जंग, वो जंग के समान है। जैसे जंग कहीं लोहे में थोड़ा सा भी लग जाए पूरे को बर्बाद कर देगा, ऐसे संसारी के लिए जो प्रेम कहा जाने वाला है वो काम है वो जीवन को बर्बाद कर देता है। प्रेम कैसा है, शुद्ध लखवान हिम है। लखवान माने क्या है, लखवास तपाए जाने पर उसको मैल को छोड़कर विशुद्ध एकदम चमचमाता हुआ सोने के समान निर्दाग वो प्रेम। कृष्ण ऐसे प्रेम से ही वशीभूत होते हैं, ये राधिका जी का। लाजनी का सार प्रेम, प्रेम का सार महाभाव, महाभाव स्वरूप है राधा ठाकुर है, इसलिए राधा रानी का ये स्वरूप है। उनका कार्य और कुछ नहीं बस कृष्ण को प्रसन्न करना किसी प्रकार से। फिर बतलाया विलास तत्व, विलास तत्व में बतलाया दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, उसमें ना सो रमन ना सो रमनी, दोनों एक हो जाते हैं। विरह रूपी कड़ाह में दोनों का चित्त द्रवित हो जाता है, विरह रूपी कड़ाह में हर्मोदय। हर्म माने क्या,
बड़ा कड़ाह
नीचे आग, विरह का ताप जल रहा है और दोनों उसमें मिल गए लाख लाख और वो दोनों गल करके पानी जैसा द्रवित, दोनों मिल गए। अब वो तुम और हम सब दोनों उसमें, अब वहां पर ना सो रमन ना सो रमनी वैसी स्थिति है। और इसी यही है महाभाव का अंतिम अवस्था मादन और मोदन। राधा जी का अतिरिक्त और कहीं भी ये नहीं हुआ, इसी को बतलाया महाभाव। कृष्ण हुए रसराज और ये हुआ राधा जी का महाभाव, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, यही विलास तत्व है। रामानंद जी ने कृष्ण को देखा है, राधा जी को भी देखा है, जुगल विलास भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य जब हुआ जबकि महाभाव और असराय दोनों मिलकर के एक हो गए, देख करके झट मूर्छित हो गए। और जब ही एक कह रहे हैं तो महाप्रभु जी ने हाथ वहां पर उनके मुख में रख दिया। बस क्यों बस कहा? बस कहने का यही तात्पर्य था कि मैं वही हूं, और स्वराज और महाभाव दोनों से मिलकर के जब ही आपने इसे और आगे कुछ कहा तो हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा, मैं वही चीज हूं, और जगत के लोग सब जान जाएंगे कि मैं वही हूं। इसलिए चुपचाप आपने बस ये कर। इसके बाद में महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा ये तो सब चारों पक्ष हुए, अब इसमें जो हमारा प्रयोजन तत्व है, प्रयोजन तत्व क्या हुआ जीवों के लिए वो बतलाएंगे। ये सब चीजों को जीव कैसे प्राप्त करेगा, जो जीव है सागर कैसे प्राप्त करेंगे इतने उच्च भाव को, जैसे सभी लोग नहीं पाएंगे। पहले तो कृष्ण की भक्ति ही कोटि स्वपि महामुनि, कोटि कोटि लोगों में से कोई एक को ऐसा हो, और उसमें कोटि कोटि लोगों में से जो एक का हुआ, इसे खोले दो तो हवाला दे, उसमें से कोटि कोटि में से भी जो एक हुए, वैसे कोटि कोटि में से उसी एक का ही उस प्रेम में प्रवेश होता है। यहां तक कि दास्य सख्य और बात्सल्य का भी वहां पर प्रवेश नहीं है। मधुर में भी मर्यादामयी मधुर का भी वहां पर स्थान नहीं है, वो लोग भी नहीं प्रवेश करते। रुक्मिणी सत्यभामा जैसे लक्ष्मी इत्यादि के लिए भी वो बहुत परम दुर्लभ है। बिना केहू नहीं पाए, महाप्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही है, साध्य वस्तु की यही तक अवधि मैंने सीमा है, कहां तक बतलाया, राधा जी के भाव आश्रय का भाव यही तक अंतिम उसकी सीमा है, कृष्ण प्रेम की जो श्रीमती राधिका में अवस्थित है। तुम्हार प्रसादे यहां जान लू निश्चय, आपके आपकी कृपा से मैंने इसे समझा। महाप्रभु जी कह रहे हैं राय रामानंद की, रामानंद की कृपा से महाप्रभु जी ने इसको जाना। महाप्रभु जी झूठ बोल रहे हैं कि सच अभिनय कर रहे, अभिनय कर रहे नहीं, ठीक कर, ठीक पूरा ठीक कर रहे हैं, इसलिए तो उनका अवतार हुआ था कृष्ण, और इसलिए राधा भाव लिया था। अब राधा भाव तो उनका जैसे कांति तो लिया किंतु भाव नहीं था, राय रामानंद के पास में क्यों पहुंचे, और ये भीतरी रहस्य जो ललिता विशाखा जी राधा जी की सेवा करती हैं उनको पता है राधा जी के भावों का, इसलिए उनका ये जो रहस्यपूर्ण भाव था महाप्रभु जी ने राय रामानंद जी से अर्थात विशाखा सखी जी से लिया, सब मन को किया। ओ ऐसी बात, जब भी राधा जी का भाव हृदय में न रहे तो इन भावों को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उनकी शिक्षा से महाप्रभु जी के अंदर में कौ जैसे महाप्रभु में या कृष्ण में तब तो कमी आ जाएगी, पूर्ण नहीं हुए, पूर्णम अदह पूर्णम उदच्यते, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, और कृष्ण में भी अपूर्णता आएगी, कजे नहीं अपूर्णता नहीं आएगी, जानते हैं कुछ अनुभूति नहीं थी इसकी, ये वो राधा जी का भाव कैसा होता है अब उन्होंने कुछ समझा, किंतु अभी और भी बाकी रह गया नहीं? कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं रसोई बनाना नहीं जानते, उनको राबड़ी या खुरचंद उनको खाना पसंद है, रसगुल्ला होना होता है ना बहुत अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, किंतु कैसे बनता है प्रस्तुत किया जाता है ये उनको पता नहीं। जब इनको कभी इच्छा हुई खाने की और कारीगर वैसा नहीं मिला या दुकान नहीं रही तो क्या करेंगे, खाने का। अब वो चाहते हैं कि जब जब हमारी इच्छा हो तब हम उसको खाएंगे भी, तो सब तुम बनाना सीखो। तब कृष्ण पहले कृष्ण लीला तक आस्वादक थे खाने वाले, किंतु इसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो नहीं जानते हैं, केवल आस्वादन किया पांचों रसों का, शांत दाक्ष सबके बाद सल्या और मधुर का, और सबसे मधुर लगा वही उनको मधुर। किंतु भाई ये कैसे बनता है अब उसका प्रिपरेशन जानने के लिए, कैसे ये होता है ये जानने के लिए अब इनसे प्रश्न कर रहे हैं। साध्य वस्तु साधन बिना के हो नहीं पाए, कृपा करी कह रहा है पावर। बिना साधन के कोई साध्य वस्तु नहीं पाता, वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकरी इत्यादि के द्वारा पैसा पाया जाता है कठोर परिश्रम के साथ। जिनके माता पिता धनी हैं उनके लड़के पैसे को बर्बाद करना जानते हैं किंतु कमाना तो जानते नहीं, इसलिए उनके यहाँ कोई पैसे का कोई मूल्य नहीं होता, बर्बाद करते हैं। यदि पैसे को कमाना पड़ेगा तो वो समझेंगे। इसी तरह से बिना साधन के यह प्रेम भी नहीं होता, ये कैसे मिलेगा। एक तो महाप्रभु स्वयं अपने अनुभव करने के लिए, और दूसरी बात जीवों में जो अधिकारी जन हैं वो लोग भी जाने और इस चीज में प्रवेश करें, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया। महाप्रभु कुछ हद तक तो जानते हैं किंतु इस प्रेम के विषय में अभी तक नहीं जानते हैं, अब वो जान रहे हैं। कृष्ण कभी साधक रहे कभी साधक न रहे, वो साध्य ही रहे हैं और आस्वादन करने वाले, अब वो साधक ज्ञान करके जीवों के लिए इसके लिए वितरण करेंगे। इसलिए कहते हैं कृपा करी कह रहा है पावर का, यह कैसे मिलेगा, यह कैसे संभव हो सकता है। एक करोड़पति आदमी है, घर में ही उन्होंने नौकरों चाकरों को लगा देता है जो रसगुल्ला बनाओ वो बनाते, किंतु अपने नहीं बना सकते, कोई हर्ज नहीं है, उनके बड़प्पन में कोई कमी नहीं आएगी, किंतु यदि बनाना सीख लेने तो और भी एक बार। वैसे आज कृष्णचंद्र जी इनसे पूछ रहे हैं कैसे इस प्रेम में प्रवेश किया जाता है और कैसे जीव इसमें प्रवेश। सबसे पहली बात ये है पूर्व जन्म का संस्कार हो और इस जन्म में उस संस्कार को और आगे पुष्टि कराने वाला कोई गुरु हो, ऐसे नहीं होगा। पहली बात तो पहली शर्त। दूसरी शर्त है उन संस्कारों के द्वारा किसी के अंदर में लोभ उत्पन्न हो गया कि मैं खाऊंगा तो रसगुल्ला ही, मैं और कोई चीज नहीं खाऊंगा, ये लोभ होना चाहिए। ऐसे ही मधुर रस के लिए या प्रजरस के लिए ऐसा लोभ चाहिए। पूर्व जन्म में उनको सिद्धांत का ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, इसी को कहते हैं संस्कार पूर्व जन्म का। वो लोग शास्त्रों का तात्पर्य है ये सभी जानते हैं। अच्छा गोपियां जितने प्रकार के प्रमाण इत्यादि हैं और सब सिद्धांत हैं वो जानती थी कि नहीं,
जो कहानी हुई सिद्धांत
उद्धव जैसे साधक, नारद जी जैसे आचार्य, भक्ति के आचार्य, इन सबको नंद बाबा ने उद्धव जी को देखो ना जैसे एकदम चमत्कृत कर दिया गोपियों ने, और गोपियां तो और चमत्कृत कर दी उनके पास में सभी सीखने के लिए। ये नारद जी उद्धव जी जो भक्ति के बड़े बड़े आचार्य हैं सब लोगों के यहाँ से थे, सब सिद्धांत में पारंगत। इसलिए मूर्ख लोग इसको पाएंगे जिनको सिद्धांत का ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारों से और इस जन्म के संघ के संस्कार से उनकी भक्ति में लोभ जो उत्पन्न हो गया, अब इधर में इतर चीजों में उनकी रुचि ले गई और वो कुछ सीखना नहीं चाहे। तभी जब जरूरत होगी ना, जैसे महाप्रभु गोपी भाव में आविष्ट है, राधा भाव में आविष्ट, किंतु दक्षिण देश में गए तो तत्व ज्ञानियों के साथ में तर्क वितर्क और सब लोगों से तर्क वितर्क विचार करके उनको सहज रूप में ही उन चीजों को तत्वावबोध करा दिया। ऐसे ही भक्त लोग, रसिक भक्त लोगों में भी ऐसे होता है। जैसे हमारे बलदेव विद्याभूषण जी सब विषय में पारंगत, सब शास्त्र इत्यादि सब, और इसके बाद में पुरी में आए महारसिक परम विद्वान, कौन थे वो, राधा मोहन या क्या, उनके यहाँ आए, सत्संग का विचार उनको सुनाया तो वो चमत्कृत हो गए और उनके शिष्य बन गए। फिर उन्होंने उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के यहाँ पर वृंदावन में भेजा। ऐसे ही यदि गलता की बात न होती और लोगों में विवाद नहीं हुआ होता तो बलदेव प्रभु को कौन जानता, ये इतने बड़ा भारी विद्वान है कोई जानता, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोई जानता वैसा, जो बलदेव प्रभु जिनके शिष्य हैं और वहां पर चारों संप्रदायों को समस्त विद्वानों को अपने विचारों से परास्त कर दिया, जब बलदेव प्रभु की इतनी महिमा है तो इनकी महिमा कैसे होगी। इसलिए ये सब भी कुछ प्रयोजन होता है। तो वो उन्होंने उपाय पूछा कि ऐसे दुर्लभ वस्तु में कैसे हम प्रवेश करेंगे। राय कहे जेई कहाओ से ही कही बानी, की कही ए भानुमंद किछु ही न जानी। राय जी कहते हैं इतने गंभीर प्रश्न और इतनी सुंदर समालोचना आलोचना आज तक हमको कभी सुयोग नहीं मिला। हुआ था यदि महाप्रभु के साथ में इनका यह संलाप नहीं होता तो जगत वंचित रह जाता। महाप्रभु जी ने उनको प्रकाश किया ये इतने बड़े भारी रसिक विद्वान तत्वज्ञ सब प्रकार से योग्य हैं, ये महाप्रभु स्वयं उनको प्रकाश किया। तो वो कहते हैं आप जो कुछ हमसे कहते हैं वही मैं कहता हूं। चैतन्य चरितामृत ये कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यह पुस्तक प्रकाश किया, वो कहते हैं कि गोविंद लिखाए मोर, ये पुस्तक जो है ना गोविंद मदन मोहन इस पुस्तक को लिखवा रहे हैं, हाथ में पकड़ करके हमारा हाथ और लिखवा रहे हैं। कौन प्रेरणा कौन दे रहा है, गोविंद जी। और किसकी बातें लिख रहे हैं, गोपीनाथ की बातें लिखवा रहे हैं मदन मोहन, प्रेरणा दे रहे हैं गोविंद और लिख रहे हैं राधा गोपीनाथ की ये सब चीजें। मैं नहीं लिख रहा, जीव कभी लिख ही नहीं सकता है यदि वो न खुद लिखा दे राधा गोविंद। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये गोविंद भाष्य हमने नहीं लिखा, लिखाए मोरे गोविंद जी लिखवा रहे हैं, इसलिए उनका नाम रख दिया गोविंद। व्यास जी ने कहा कि मैंने भागवत नहीं लिखा, किसने लिखा, वो पूर्ण पुरुष जो है उन्होंने ही लिखवाया। नारद जी की कृपा से मैंने उनके हाथों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और समाधि में मैंने देखा और ये कृष्ण ही जो पूर्ण ब्रह्म है नंदनंदन वो इसको प्रकाश। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने रामायण नहीं लिखा, कौन लिखवाया, रामचंद्र जी ने खुद ही लिखवाया, नहीं तो मैं क्या लिख सकता। ये सब चीजें नित्य अनादि हैं, कोई लिख करके नया ग्रंथ कुछ नहीं, ये तो ज्ञान तत्व है, रस तत्व है, नित्य काल प्रवाहित होता है उसको लोक लोचनों के सामने में ये लोग प्रकाश मात्र कर देते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत के लेखक अथवा ये सब व्यास जी नहीं है,
प्रकाशक
ही है। ऐसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी प्रकाशक। यहाँ राय रामानंद कहते हैं कि आप ही हमारे हृदय में प्रवेश करके ये वक्ता भी आप ही हैं और श्रोता।
मुझे
कहिए भालानंद, मैंने क्या अच्छा और बुरा कहा, मैं ये नहीं समझता। कोई भी भक्त होगा उसको कोई पुष्पांजलि देता है चरण में तो वो क्या कहते हैं, वो अपने आप हजम नहीं करता, बद्ध जीव हजम करने की चेष्टा करेगा और मरेगा। और मुक्त महापुरुष लोग होते हैं वो क्या लेकर के अपने गुरु चरणों में लेकर के देते। ये गुरु चरणों से मैंने सुना था, हमारा इसमें कुछ नहीं है। और बात भी सच है, जो कुछ भी सुना गया गुरु चरणों की कृपा से सुना है, वैष्णवों की कृपा से हमने सुना है। और इसका श्रेय कौन किसके ऊपर जाएगा, जिनकी बातें हैं गुरु जी के चरणों का उन्होंने ही ये श्रेय। जब हमको जो प्रतिष्ठा मिल रही है, ये प्रतिष्ठा के अधिकारी मैं नहीं, कौन हूँ? ऊपर से मालूम होता है जो मुख से निकल रहा है। मैं भी जो कुछ कर रहा हूँ ये मेरी बात है, अपनी है न किसकी है, हमारे गुरु जी की और इन गुरु वर्गों का ये है। जब ही परिवेशन करने में गलती हो गया ना, तो वो गलती मेरी या साधकों का, और जो कुछ उत्तम चीजें हैं वो उनकी चीज है। यही भाव रखने पर माया नहीं पकड़ेगी, और नहीं तो माया अभिमान लगा करके डुबा देगी। इसीलिए ये करें कि कहिए भालुमंद, मैं भालुमंद अच्छा और बुरा मैं नहीं समझता जी, मैं क्या कह रहा कि चुन न जाए। त्रिभुवन मध्य ऐसे कौन भी ये तुम्हार माया नाथ भई दे, पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी इस माया नाथ, ये ठगपन जो आप जो कर रहे हैं ठग रहे हैं। कौन ऐसा जीव है जो स्थिर रह सकता है, कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है। यहाँ पर मायानाथ क्या है, एक ब्राह्मण सन्यासी के रूप में उनके सामने खड़े हैं, और हैं कौन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अखिल रसामृत सिंधु हैं, उनके सामने में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं साधारण एक जीव हूँ, हमारा इस प्रश्न का समाधान बतला दीजिए। असंत दीनहीन होकर के पूछे, ये उनकी माया कहवा रहे हैं। उसके अंदर में प्रेरणा भी दे रहे हैं और सुन भी रहे, वक्ता श्रोता दोनों हैं। इसलिए ये माया नर कौन स्थिर रह सकता है, मोर मुखे वक्ता तुम्ही हो तुम्ही श्रोता, असंत रहस्य सुनो साधनेर कथा, वक्ता भी आप। इतना सुंदर प्रश्न कोई जगत का नहीं कर सकता, संभव पर नहीं है किसी के। हम तो साधारण प्रश्न यही कह सकते हैं, कैसे भोजन मिलेगा, कैसे कपड़े मिलेगा, कैसे हैं हम सुखी रह सकते हैं, ये सारी संबंधी प्रश्न। अधिक से अधिक आत्मा की मुक्ति कैसे होगी, यही सब प्रश्न करें। ये सब गुरु प्रश्न करना किसी साधारण श्रोता का काम है, ये महाप्रभु जैसे व्यक्ति प्रभु का ही काम है। अत्यंत रहस्य, वो आपने जो कहा साधन, वो बहुत ही रहस्य, साध्य भी रहस्य है, किंतु साध्य को तो हमने कुछ कहा, अब साधन का जो रहस्य है सुनो साधन निरपत। राधा कृष्ण लीला ये अति गूढ़ तर, दास बात लयादि भावे ना है गोचर। राधा कृष्ण की जो लीला है प्रेममयी, और विशेष करके ये विलास इत्यादि के संबंध में जो हमने बताया, ये अत्यंत गूढ़ तर है, बहुत गूढ़ है। जैसे समझिए, एक आदमी वो देखा गया नंदगांव, और नंदगांव में जाकर देखा गोपियों से जहां उद्धव का ही भेंट हुई थी, वो क्या काम है उद्धव क्या है, गोपियों से और उद्धव जी की। उद्धव जी वहां पर हाथ जोड़ करके केवल बात से बैठे रहे, और श्रीमती राधिका भावाविष्ट होकर के दिव्य उन्माद में वो चित्र जल्द इत्यादि कर रही है। आज तक जगत में कहीं वो प्रकाशित नहीं हुआ, भागवत में थोड़ा सा प्रकाशित, किसी के लिए संभव नहीं प्रकाशित करना। उद्धव जी पथ पर चमत्कृत हो रहे हैं, आनंद में भर रहे हैं। कृष्ण ने हमको इसीलिए यहाँ पर भेजा, यही कृष्ण का महान अनुग्रह है मेरे ऊपर, जो इन सब सुनने का ये सब मौका है। अब वो देख रहे हैं चित्त जल किया, राधा जी के भावों को देख रहे हैं। अब ये उद्धव जी ने ग्रहण किया कि नहीं, देखा कुछ, अनुभव किया कुछ, सुना भी, प्रधानमंत्री का पद भारतवर्ष में सबसे बड़ा है या राष्ट्रपति का, तो सुनने से मिल जाएगा हम उस गद्दी पर बैठ जाएंगे, ना कुछ आस्वादन करेंगे। इलेक्शन के द्वारा जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा इत्यादि के और मुख्यमंत्री इत्यादि होते हैं, ये सब इन लोगों का वोट देने का अधिकार होता है, ये सब लोग राष्ट्रपति चुनते हैं, साधारण ये नहीं चुने, और उनके वोटों की गणना से ही वहां पर गिनती होती है, वो आदमी राष्ट्रपति चुन लिया, प्रक्रिया भी सुन लिया, हो जाएगा। ऐसे उद्धव ने वो सब चीजों को सुना, सुन करके किंतु उनका संस्कार वह नहीं था, उनके स्वरूप में ही वो चीज नहीं थी ये ग्रहण करते, बस इतना ही तक प्रार्थना किया। गोपियां जहां पर चलती हैं फिरती हैं, उनकी धूली हमारे सिर पर लग जाए तो पुरुष रूप में तो लगेगी नहीं, यदि घाट हो जाऊं और उस घाव पर गोपियां चली कहीं तो उनके चरण की धूली लग सकती है, बस इतने से मैं अपने को कृतार्थ मान। फिर कहा इसकी भी योग्यता नहीं, बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, उन धूली कणाओं को वंदना किया बस, और उसी में शांत हो गए, वो चीजें उनको भी नहीं मिली। इसलिए कहते हैं अति गूढ़ कर, जब उद्धव जी जो वहां पर गए उनको देखा उनकी बातें सुना, उनको भी नहीं हुई, नारद ऋषि की भी नहीं हुई, तब फिर किसको होगा, बड़ा वेद की ऋचाओं को भी लोभ हो जाता है बचपन से, तब उनको ये भाव कहीं किसी किसी श्रुति के मंत्रों को यह संभव है, किसी किसी ऋषियों में से लाखों कोटि में से किसी एक ऋषि के अंदर में भी ऐसी भावना, तब कोटि जन्म तक साधन भजन करके इस दुर्लभ चीज को, विशेष करके राधा जी का भाव तो किसी को मिल ही नहीं सकता, कृष्ण को भी स्थायी रूप में नहीं होगा, स्थायी रूप में कृष्ण को विवादवादन करने के लिए जब इच्छा करेंगे तब होगा, कृष्ण का अपना जो स्वरूप है वही रहेगा, वो रसिक रहेंगे, रसिक शेखर रहेंगे सब तरह। तो दास्य बात्सल्य भावे ना है गोचर, दास्य और बात्सल्य के लिए भी ये गोचर नहीं है, अर्थात उनके लिए भी संभव पर नहीं है। दास्य माने हनुमान या वहां के रक्तक इत्यादि दास्य हैं, अथवा दास्य और बात्सल्य के बीच में रहने वाले जो सखा इत्यादि हैं, जब बात्सल्य को नहीं हुआ दास्य को नहीं हुआ तो इनको कहां से होगा, किनको होगा, जिनको महाभाव हो सकता है उनको महाभाव। अनुराग तक में दास्य है, सख्य वाले दास्य वाले कहां तक हैं, प्रेम तक, और सख्य वाले अनुराग तक, शांत वाले तो उसमें है ही नहीं, दास्य वाले प्रेम तक हैं, उनमें स्नेह मान प्रणय ये सब दास उसमें नहीं होगा, किसी भी दास को मान हो गया ये नहीं संभव है, ये होगा ही नहीं, इसलिए उनके स्वरूप में नहीं है। अब रह गया सख्य अनुराग तक और किसी किसी की प्रिय नर्म सखाओं का महाभाव के नीचे अवस्था तक होगा, इसलिए इन लोगों में भी वो मथुर रस की संभव है। रह गया बात्सल्य अनुराग की चरम सीमा तक पहुंचेगा, वो तो महाभाव तक भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए वो उपकरण ही नहीं है जो इसको वो अनुभव कर सके। रह गए महिषियां द्वारकापुरी की, उनका प्रेम कहां तक, अनुराग की अंतिम दशा हो करके महाभाव को स्पर्श कर लेंगे। यहां तक तो प्रेम वैचित्र तक कुछ दिव्य अनुमान थोड़ा सा होगा, घुमाई थी या ज्वलित की भांति, बस यहीं तक प्रज्वलित यह दिग्ध तक हो सकता है। इसलिए इन लोगों में भी ये संभव पर नहीं है। ये राधा जी की अपनी जो सपक्ष वाली है उनमें अधिरूढ़ भी वो छू सकती है, किंतु अधिरूढ़ की अंतिम दशा जो मादन मोदन है ये वो लोग ललिता विशाखा के लिए भी असंभव। जो अपने भावों को दूसरे में भी संक्रमित करके उन्हें भी अपने भाव जैसा बना देना और दिव्योन्माद की परम उच्च स्थिति इत्यादि में पहुंच जाना, मिलन में भी विरह, विरह में भी मिलन, ये दूसरों लोगों के लिए संभव पर नहीं। ये सब चीज केवल मात्र श्रीमती राधिका। इसलिए राधिका का भाव तो जगत में कोई ललिता तक जब भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए सब हाँ एक चीज में अधिकार है ये बतलाएंगे। इसलिए इन लोगों में दास्य बात्सल्य इत्यादि के लिए गोचर नहीं है। क्यों, महाभाव है ही नहीं है तो क्या गोचर होगा। एक आदमी मैं चाहता हूं कि मैं वकील हो जाऊं, हो जाएगा, पहले बीए पास करो, ग्रेजुएट हो जाऊं,